Priya Bhai, Obeno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So yes, we're going to be walking down to the temple at, going down to the temple at 7 o'clock tonight.
To 7 baje aaj hum Bodhi Ruksh ke paas jayenge.
We're going to meet there at 7:15.
सवा सात बजे हम सब लोग वहाँ अपने सत्र की शुरुआत करेंगे।
I think we're going to be right in front of the tree.
मुझे ऐसे लगता है सीधे हम पेड़ के नीचे होंगे।
But we'll have to see what arrangement has been made.
देखेंगे क्या व्यवस्था वहाँ की गई है।
But when we go down, just before we cross to the plaza before the temple, there's a park on the right hand side.
Which park? Right side park.
The park on the right hand side.
तो जैसे ही हम बोधि वृक्ष के पास जाएंगे या उस रास्ते से चलेंगे दाहिने हाथ पर वहाँ एक पार्क है बगीचा है
And in that park, there's a statue of Baba Sahib.
और बिल्कुल उसके पीछे जो पार्क है वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा है
And Baba Sahib is pointing to the Bodhi tree.
और बाबा साहब उस बोधि वृक्ष के तरफ ऐसे हाथ दिखाते हैं
every night we'll be passing that.
हर रात को हम वहां से गुजरेंगे
And on the last night I hope that we'll be able to go in and garland Baba Sahib's statue.
और आखिरी की शाम जो है आशा करते हैं हम लोग जाए और वहां बाबा साहब के पुतले को माल्यार्पण कर पाए
We did that last time and I hope we can do it this time.
पिछले साल हमने वह किया था उम्मीद है इस साल भी हम उसे करेंगे
Because it's because of Baba Sahib that most of you have come to the feet of the Buddha.
क्योंकि बाबा साहब की वजह से आप सब लोग बुद्ध के चरणों पे आए हैं
And Baba Sahib embodies for us a very important aspect of the Buddha's enlightenment.
और बाबा साहब जो है बुद्ध के संबोधि का एक महत्वपूर्ण आयाम दर्शाते हैं
We speak of Baba Sahib as a Bodhisattva.
बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं
Everybody says Dr. Baba Sahib, Bodhisattva Dr. Baba Sahib Ambedkar.
हर व्यक्ति ऐसे ही बाबा साहब को बाबा साहब के लिए उद्गार करता है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
But of course most people don't know really what that means.
लेकिन काफी लोग जानते नहीं है कि उसका अर्थ क्या होता है
But it's really important that we do know what it means and that we work with what it means.
तो यह आवश्यक है जानना कि इसका अर्थ क्या होता है और फिर उसके साथ काम करना कि उसका वाकई में मीनिंग क्या अर्थ क्या है
बाबा साहेब embodied to a very marked degree the principle of the bodhisattva
बाबा साहेब ने काफी यानी बोधिसत्व के गुणों का काफी उच्चांक उनमें हमें मिलता है
working for the benefit of others on the basis of the dhamma
औरों के कल्याण के लिए काम करना धम्म के बुनियाद पर
सो ड्यूरिंग दिस इवेंट आई एम होपिंग वी कैन ड्रॉ आउट मोर फुली दिस एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिस एनलाइटनमेंट
तो इस शिविर के दौरान मैं आशा करता हूं कि वो जो आयाम है बुद्ध के संबोधि का बोधिसत्व आयाम उसको हम पूरी तरह समझे
एंड आई होप दैट थेरबाय वी कैन आवरसेल्व्स टेक अ स्टेप टू बी मोर लाइक बोधिसत्वस
और उसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं ऐसी कोशिश करें कि हम ही बोधिसत्व बन जाए
ड्यूरिंग द टू रिट्रीट्स वी हैड सो फार वी वेरी मच स्ट्रेस्ड द बुद्धस विजडम
पिछले तीन दो शिविरों में हमने इस बात के ऊपर जोर दिया कि बुद्ध की प्रज्ञा क्या है
वी एम्फसाइज्ड दैट द बुद्ध सॉ थ्रू द इल्यूजन ऑफ अ सेल्फ
हमने देखा कि बुद्ध ने जो भ्रामिकता है स्व की उस भ्रामिकता को भेद कर वे देख पाए
वी स्ट्रेस द बुद्धस फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंडीशंस
बुद्ध की जो मुक्ति है सभी परिस्थितियों के परे है उसे हमने देखा
फॉर इंस्टेंस चांटेड एवरी नाइट द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री
हर शाम को हमने बुद्ध का जो विजय गान है उसका गुणगान किया
इन दैट सॉन्ग ऑफ विक्ट्री द बुद्ध गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज लीविंग बिहाइंड हिज सीइंग थ्रू What keeps conditioned existence going?
उस विजय गान में हम देखते कि बुद्ध ने देखा कि जो भी परिस्थितियां उन्हें अस्तित्व में लाती है उसके परे उसे भेद कर बुद्ध ने सत्यता को देखा है
He sees the house builder.
उन्होंने जो गृहकार है उस गृहकार को देखा है.
The house builder who builds this house of pain and suffering again and again.
उस गृहकार को उन्होंने देखा है जो गृहकार बार बार इस दुखदायी घर को या गृह को बनाता है.
So it's very important that we do stress this wisdom side of the Buddha, this freedom side of the Buddha.
तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके जो मुक्ति का भाग है या मुक्ति का आयाम है उसे हम देखें या समझे.
But compassion is equally important.
लेकिन जो करुणा है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
Working for the benefit of others on the basis of compassion is as important as wisdom itself.
तो औरों के कल्याण के लिए करुणा के आधार पर काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रज्ञा.
And in fact, wisdom and compassion are not really two different things at all.
और वैसे देखा जाए तो प्रज्ञा और करुणा दो भिन्न या अलग चीजें नहीं है.
If there's real wisdom, then there's compassion.
अगर वहाँ वाकई में प्रज्ञा है तो वहाँ करुणा है.
If there's real compassion, then there's wisdom.
और वहाँ अगर सच्ची करुणा है तो वहाँ प्रज्ञा है.
I said that last night, but it's worth saying again and again and again.
रात को मैंने यह बताया लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इसे कहना यानी योग्य है.
Sometimes our skulls are so thick.
कभी कभी हमारी क्या कहते हैं उसको अभी खोपड़ी जो है वो खोपड़ी जो है वो काफी मोटी है तो जल्दी शब्द घुसते नहीं है.
नथिंग विल गो इन.
वही बात कि वो कोई चीजें तुरंत वहां घुसती नहीं है.
सो व्हेन वी से विजडम एंड वी से कंपैशन वी थिंक ऑफ टू सेपरेट थिंग्स.
तो जब हम प्रज्ञा या करुणा कहते हैं तो ऐसी दो भिन्न बातें ऐसा हम सोचते हैं.
But yes, it's not like that.
लेकिन ऐसा नहीं है.
It's only different angles on the same transcendent experience.
तो जो परिवर्तित जो अनुभव है उसके वो दो भिन्न आयाम है.
Two sides of a coin.
ऐसा कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू है.
You can't have one side without the other.
एक बाजू दूसरे बाजू के बगैर हो नहीं सकती.
In English we call the side with the queen's head on it heads.
तो जैसे हेड जिसे हम कहते हैं जहां पे सिक्के के ऊपर वो उनकी रानी का सर छपा होता है.
सो ऑब्वियसली द अदर साइड इज टेल्स.
तो दूसरी बाजू होती है टेल.
यू कांट हैव हेड्स विदाउट टेल्स.
तो आप टेल नहीं हो सकती हेड के बगैर.
सो यस, सो दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बुद्धस एक्सपीरियंस नीड टू बी ड्रॉन आउट टूगेदर.
तो यह बुद्ध के दो आयाम जो है इकट्ठा उजागर करने होते हैं लाने होते हैं.
सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस टाइम, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस टाइम मोर ऑफ द कंपैशनेट एंगल देन द विजडम एंगल.
तो इस बार हम बुद्ध के करुणा के आयाम को अधिक उजागर या करीबी से देखने वाले हैं प्रज्ञा के आयाम की तुलना में.
ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस रिट्रीट्स आई हैव गिवन टॉक्स व्हिच ड्रॉ आउट द बुद्धस विजडम.
निश्चित ही पिछले शिविरों में जो श्रृंखला हमने की वो प्रज्ञा की बारे में थी, प्रज्ञा के बारे में थी.
But more importantly, we've done the six element practice every day.
लेकिन छह धातुओं का ध्यान हमने नियमित रूप से किया.
So we've explored in our own experience a little taste of wisdom.
तो हमारे अपने अनुभव में एक छोटा सा जो स्वाद है प्रज्ञा का क्या हो सकता है उसे चखने की कोशिश की.
To the extent that we can really see that all these elements are conditioned, impermanent, not self, then there's a little taste of wisdom.
जब हम देखते हैं अपने अनुभव में कि परिस्थिति जो है वह यानी अनुभव जो है परिस्थिति सापेक्ष है वह अनात्म है तब हम प्रज्ञा का थोड़ा सा स्वाद लेते हैं.
And that gives us a little glimpse into the mind of the Buddha.
और वो हमें बुद्ध के मन की एक हल्की सी झलक हमें देता है.
This time we're going to do the bodhicitta practice together.
इस बार हम बोधिचित्त का अभ्यास इकट्ठा करने वाले हैं.
And that will give us a little glimpse into the compassionate aspect of the Buddha's mind.
और वो भी हमें एक छोटी सी झलक देगा बुद्ध के करुणा की.
We'll get a direct experience of that for ourselves, at least to some extent.
हम प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव लेंगे कम से कम कुछ हद तक.
So we'll be able to approach closer to the Buddha when we're at the temple.
तो हम बुद्ध के काफी करीब जाने की कोशिश करेंगे जब हम महाविहार में जाएंगे.
When we visualize the Buddha, of course we're visualizing the Buddha as completely integrating wisdom and compassion.
जब कभी भी हम बुद्ध का संदर्शन या उनका उनकी कल्पना करते तो यह दोनों पहलू प्रज्ञा और करुणा के साथ में होते हैं.
But because we'll be doing the bodhicitta practice, I hope that will bring us closer to that side of his enlightenment.
लेकिन जब हम बोधिचित्त साधना करेंगे तब शायद उनके करुणा के आयाम के हम काफी करीब जाएंगे.
So yes, the story of the Buddha's time at Bodh Gaya is very very rich.
तो बुद्ध की जो कहानियां है जब वे बोधि वृक्ष के तले उन्होंने जब विहार किया वह काफी यानी रोचक कहानियां है.
We've stressed in previous retreats something of all these different aspects, all these different stories.
तो पिछले शिविरों में हमने इन सब भिन्न भिन्न जो कहानियां थी उनको हमने करीबी से देखा.
We've talked, for instance, about the very important incident under the Ajapala Nigrodha.
जैसे कि उन कहानियों में एक महत्वपूर्ण कहानी जो थी अजपाल निग्रोध पेड़ के नीचे की.
You know, when you come down the long steps that lead to the level of the Mahabodhi temple, there's a pillar.
जब आप सीढ़ियां उतरते हो और जब मंदिर के समतल भाग पर जब आते हो तो वहां पे एक स्तंभ है.
That pillar, I believe, is an Ashokan pillar.
वह अशोकन स्तंभ है.
I'm not sure about that, but I think it said that was from the time of Ashoka.
उसके बारे में मुझे पता नहीं लेकिन शायद अशोक के समय कालीन से ही वह पिलर वहां है.
And that marked the site of a great banyan tree.
और वह निशानी है वहां पे जो बरगद का जो बड़ा पेड़ था उसकी.
And it was called Ajapala, the goat herds tree.
तो उसे अजपाल वृक्ष कहते हैं.
And it may have been where the goat herd used to bring the goats to shelter from the midday sun.
और वहां शायद वह जगह होगी जहां पे वो जो भेड़ बकरियां चराने वाला जो होता है वो उनको वहां आराम के लिए लाता हो.
And the Buddha spent several periods there.
बुद्ध ने काफी समय वहां बिताया.
According to the sutras, he wandered around the whole site over several weeks.
सूत्रों में बताते हैं कि उन सभी अलग अलग जो स्थलियां है वहां बुद्ध 7 हफ्ते तक चलित होते रहे या उन्होंने विहार किया.
And of course he especially used to sit underneath the right kind of tree.
और निश्चित ही उन सभी पेड़ों में जो सही पेड़ होगा उसी के नीचे बुद्ध बैठे होंगे.
A tree that gave him good shelter.
ऐसे पेड़ के नीचे जहां उनको अच्छा आश्रय मिला हो.
With water nearby in the Naranjara river.
जहां पे उनको पानी मिलता हो जैसे निरंजना रिवर है.
Nobody going to bother him.
उनको कोई व्यत्यय ना करे.
According to not the canonical stories but the commentarial stories, there are at least 3-4 trees around that site where he spent some time.
तो सूत्रों के संदर्भों से नहीं लेकिन उनके ऊपर जो टिप्पणियां लिखी गई है उन टिप्पणियों के जिसे कमेंट्री कहते हैं उसके संदर्भ से हमें ऐसे लगता है कि उस पेड़ के इर्द गिर्द 3-4 पेड़ हुआ करते थे.
Of course, the Bodhi tree is the most famous for us.
निश्चित बोधि वृक्ष जो है वो सबसे प्रसिद्ध है.
But this Ajapala banyan is very very significant in the story.
लेकिन उन सब कहानियों में अजपाल वृक्ष जो है वह भी काफी प्रसिद्ध है.
And several incidents took place there.
और काफी घटनाएं वहां पे हुई.
For instance, it's there that he encountered the Brahmin Huhunkajati.
वही पेड़ था जिस पेड़ के नीचे बुद्ध का सामना हुआ हुहुंकजाति ब्राह्मण से.
And Huhunkajati asked him what a true Brahmin was.
और हुहुंकजाति ने बुद्ध को पूछा कि सच्चा ब्राह्मण कौन होता है.
And the Buddha rejected any notion of a Brahmin being made by virtue of birth.
और बुद्ध ने उसकी यानी टीका की या उसका विरोध किया जिसे हम कहते कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से ही होता है इस विधान के ऊपर.
He tried to give new meaning to the term Brahmin.
उन्होंने ब्राह्मण इस शब्द को नया अर्थ देने की कोशिश की.
In a way, he said, to be a Brahmin, you have to earn being a Brahmin.
तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होने के लिए आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा.
You have to become a Brahmin by virtue of your moral qualities.
आपको आपके नैतिक गुणों के आधार पर ही ब्राह्मण बनना होता है.
At one point the Buddha looked at all his disciples, his enlightened disciples, many of whom were Kshatriyas and from other communities.
तो बुद्ध ने फिर अपने सभी शिष्यों की श्रृंखला में देखा, उन शिष्यों में काफी लोग जो थे वे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, अन्य जातियों से थे.
Oh, used to be Kshatriyas and other communities. Huh?
या हुआ करते थे ऐसा हम कह सकते हैं उसके पहले, यानी भिक्षु होने के पहले.
Because when they became bhikshus, they left behind all caste.
क्योंकि जब वे भिक्षु बने तब उन्होंने अपनी जातियां पीछे छोड़ दी.
But the Buddha pointed to them and said, "These are Brahmins."
लेकिन बुद्ध pointed out them, "These are Brahmins."
Yes.
बुद्ध ने उनके ऊपर यानी अपना रुख केंद्रित करके ही बोला कि ये ब्राह्मण है.
He didn't mean that they were Brahmins by birth.
तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये सब लोग जन्म से ब्राह्मण है.
He meant that they become worthy.
उनका अर्थ यही था कि वे योग्यता पात्र या वो लायक बने.
So under that Ajapala Nigrodha, the Buddha rejected the whole caste system.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस अजपाल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने जाति व्यवस्था का नकार किया.
So in a way, that was where the Dhamma revolution was launched, right there.
तो वही वह जगह है जहाँ पे धम्म क्रांति की स्थापना हुई.
But there's another very important incident that took place there.
लेकिन और भी एक महत्वपूर्ण घटना उस वृक्ष के तले हुई.
Some stories say that it was quite late on in his time at Bodh Gaya.
कुछ संदर्भ में बताते हैं कि काफी दिन हो गए थे जब बुद्ध बोधगया में रहते थे, उस वक्त की यह घटना है.
He sat under that tree and he thought, "Can I really communicate what I've experienced?"
तो उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने चिंतन किया कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, क्या वाकई में मैं उसको संवादित कर सकता हूँ, बता पाऊंगा लोगों को.
He said, "Enough of teaching the Dhamma that I have found hard to reach." No point in teaching the Dhamma that I myself have found difficult to reach.
कोई ये पर्याप्त हो गया जो धम्म मैंने खोजा है, उस धम्म को बताना या उसको हासिल करना इतना कठिन है कि मैं इसे कैसे बताऊं.
For it will never be understood by those who live in Trishna and Dvesh.
तो इन लोगों को बताना यह काफी मुश्किल होगा कि जो लोग तृष्णा और द्वेष में जीते हैं.
Those died in Trishna, wrapped in darkness, will never discern this difficult to see Dhamma.
जो लोग तृष्णा में है या तृष्णा में विलीन है या डूबे हुए है, उन लोगों को वो लोग अंधकार से घिरे हुए है.
Did you say this? No. This Dhamma goes against the worldly stream.
यह जो धम्म है वह वैश्विक प्रवाह या दुनिया के जो प्रवाह है उसके विरोध में बहता है.
It's subtle, deep and difficult to see.
यह सूक्ष्म है, गंभीर है और देखने के लिए कठिन है या साक्षात्कार करने के लिए कठिन है.
So he thinks, "Why should I teach when nobody can possibly understand?"
तो उन्हें ऐसे लगा कि मैंने क्यों संभवतः इसे सिखाना चाहिए जब कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा.
Even if I taught, nobody'd know what I was talking about.
भले ही मैंने इसे सिखाया या लोगों को बताया, ये बात किसी के समझ में नहीं आएगी.
If people are so caught up with their own longings, their own hatreds, their own ambitions, they won't be able to understand what I'm saying.
तो लोग अपने तृष्णा में या अपने महत्वाकांक्षाओं में, अपने ईर्ष्या में इतने डूबे हुए हैं कि किसी को भी यह बात दिखेगी नहीं जो मैंने देखी या समझेगी नहीं जो मैं समझाना चाहता हूँ.
But it's interesting, isn't it? He's not saying he doesn't want to communicate the Dhamma.
लेकिन यह रोचक है इसमें देखना कि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ.
This is very, very important.
यह काफी महत्वपूर्ण है.
He doesn't say, "I don't care, I don't want."
वो ऐसे नहीं कह रहे कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाना नहीं चाहता.
He just can't see how to do it.
वे केवल देख नहीं पा रहे कि मैं इसे कैसे बताऊं.
He just can't see how people can grasp what he's trying to say.
वो यह देख नहीं पा रहे कि लोग कैसे समझेंगे जो मैं वदित या बताऊंगा लोगों को.
But it's very, very important, isn't it? There's never a point where he thinks I don't want to.
तो वहां पे ऐसा कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहां बुद्ध सिखाना नहीं चाहते.
So what this means is that his enlightened experience seeks to communicate.
तो यह क्या हमें बताता है या दर्शाता है कि उनका जो संबोधि प्राप्त अनुभव है वह मार्ग खोज रहा है मैं कैसे संवादित करूं या बताऊं.
That there's something about that experience that means it must be communicated.
तो उस अनुभव के बारे में ऐसी कुछ बात है कि उनके मन में यह चाहे कि मैं ये बताना ही चाहिए.
In other words, that wisdom is inseparable from compassion.
इसका अर्थ यह है कि वह जो प्रज्ञा है वह करुणा से अभिन्न है.
He sees the state that people are in.
वे देखते हैं कि लोग किस अवस्थाओं में हैं.
Now he sees it with dreadful clarity.
और जो यानी भयावह स्पष्टता जिसे हम कह सकते हैं उतनी तरल स्पष्टता से वह उसे वो देखते हैं.
He sees that they're trapped in a situation they don't understand.
वे ऐसे परिस्थितियों में घिरे हुए हैं या फंसे हुए हैं जो अपने यानी वो लोग अपने आप ही समझ नहीं पा रहे कि किस परिस्थितियों में वे फंसे हुए.
He sees that they've completely misunderstood the nature of their situation.
वे देखते हैं कि अपनी जो अपने जो परिस्थिति का स्वभाव है उस परिस्थिति के स्वभाव को उन्होंने समझा नहीं है या गलत समझा है.
And from his point of view, from his perspective, it's so easy.
लेकिन उनके दृष्टिकोण से यह काफी आसान है, सीधा है.
You know, don't do that. You're just making yourself suffer.
वे सीधा देख पाते हैं कि ऐसा मत कीजिए नहीं तो आपको दुख होगा.
You see, if you see it all clearly, you see that people want to be happy.
आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि कैसे लोग खुश होंगे, सुखी होंगे.
It's obvious if you open your eyes and look around, that's what people want.
तो आप देख सकते हैं अपने खुली आंख से कि वही लोग चाहते हैं, यानी फंसना चाहते लोग.
You can see that people don't want to be suffering.
और आप देख सकते हैं कि लोग दुख में या पीड़ित होना नहीं चाहते, पीड़ित रहना नहीं चाहते.
Of course, nobody wants to be unhappy.
निश्चित ही कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता.
Nobody rejects happiness.
कोई भी जो सुख है सुख को नकारता नहीं है.
But the problem is, people don't know how to get it.
लेकिन समस्या यह है कि लोगों को पता नहीं कि वहां तक कैसे पहुंचे.
And it's not even that they just don't know, they don't know that they don't know.
ऐसा नहीं है कि वो केवल सुखी नहीं होना चाहते, उनको पता ही नहीं है कि क्या पता करना है. उनको पता नहीं है कि वो क्या करते, उनको लगता है कि वो पता है इसलिए वो समझ में नहीं आता उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं.
They think that if you have so much money in the bank, then you'll be happy.
उनको लगता है कि बैंक में बहुत सारा पैसा है तो वो सुखी हो जाएंगे.
You think that if they think that if you marry this girl or this boy, then you'll be happy.
उनको ऐसे लगता है कि आप इस पुरुष या इस स्त्री के साथ शादी कर लो आप सुखी हो जाओगे.
Anyway, you know the line. I'm not going to multiply examples.
तो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी इसके बहुत सारे उदाहरण नहीं बताऊंगा.
We have all sorts of worldly objectives that we think will bring us happiness.
तो इस प्रकार से काफी सांसारिक वस्तुएं या ध्येय हम हमारे आगे रखते हैं जिससे हमें लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा.
This is perfectly obvious to the Buddha.
और यह स्वाभाविक है बुद्ध के लिए.
He doesn't have to think about it, you can just see.
बुद्ध को उसको उसके बारे में उन्हें सोचना नहीं है, वो स्वाभाविक या निसर्गता उसे देख पाते.
That they're chasing after happiness.
वे सुख के खोज में हैं या उसके पीछे भाग रहे हैं.
But they're chasing it after it in a way that brings them suffering.
लेकिन इस तरीके से उस सुख के पीछे वो भागते हैं जो उनको पीड़ाएं लाती है.
This is the tragedy that the Buddha sees.
और यह जो त्रासदी है यह त्रासदी बुद्ध देखते हैं.
The Buddha can see that people are completely mistaken about what really brings happiness.
Sorry, I missed this.
The Buddha can see that people are completely mistaken about what brings happiness.
और बुद्ध इस बात को स्पष्ट रूप से देख पाते कि लोग पूरी तरह संभ्रमित है, गलत राह पे दौड़ चुके हैं, जिनको उन्हें लगता है कि उससे उन्हें सुख मिलेगा.
You know, if you got wisdom, what you can see.
अगर आपको ऐसी प्रज्ञा है या प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है तो आप स्वाभाविक उसे देख पाएंगे.
Because you're not in delusion yourself, you're not confused yourself.
क्योंकि आप अपने आप या खुद ही संभ्रमित या गुमराह नहीं है.
You know what brings true happiness.
आपको पता है कि सच्चा जो सुख है वो किस बात से आता है.
And you can see all around you people just chasing after suffering.
और आप अपने इर्द गिर्द लोग देख सकते हैं जो दुख के पीछे दौड़ते हैं.
Thinking, of course, that it will bring them happiness.
ऐसा सोचकर कि यही दौड़ मुझे सुख लाएगी.
This is plain to the enlightened mind.
तो एक संबोधि प्राप्त मन के लिए, दृष्टि के लिए इसे देखना काफी आसान है.
And he knows that just with a little bit of dhamma, they can be free from suffering.
और वो जानते हैं कि थोड़ा सा ही धम्म अगर इनको मिल जाए तो वो सुखी हो सकते हैं.
He's in the position though of realizing that very difficult to get them to do it.
लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत मुश्किल है क्योंकि उन लोगों से यह करवाना कठिन है.
He looks around and he realizes that people are so trapped in their delusion that they won't do what they need to do.
तो वो देख पाते हैं कि लोग इतने ज्यादा संभ्रमित है या खोए हुए है या गुमराह है कि यह बहुत मुश्किल होगा जो मैं इनसे करवाना चाहता हूँ उसे करना.
It's a bit like a doctor who has a medicine that cures some epidemic.
वैसे वो डॉक्टर है, मान लीजिए उनके पास इसकी दवा है कि वो किसी बीमारी को दूर कर सकते हैं.
But people won't take it, they're taking all sorts of other things.
लेकिन लोग दूसरी गोलियां या दवाइयां खाते जिससे वो सुधरना नहीं चाहते.
They're getting the jadu wala to come and to do some magic ceremony, yeah?
तो किसी जादू वाले को बुलाते और उनसे वह जादू करवाते.
They're following all sorts of strange medicine bought by the side of the road.
और जो रास्ते के बाजू में जो विचित्र दवाइयां मिलती है वो दवाइयां वो लेते हैं.
They won't just do the simple thing that will cure them.
तो वो जो सीधी सी जो दवा है वो दवा लेते नहीं है जिससे वो सुधर सकते हैं.
एंड हाउ कैन यू पर्सुएड देम?
फिर आप इन लोगों को कैसे यानी आग्रह करोगे या कैसे उन्हें समझाओगे?
ऑफ कोर्स द बुद्धा वांट्स पीपल टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग.
निश्चित ही यानी संदेह बुद्ध चाहते हैं कि लोग दुखों से मुक्त हो.
बिकॉज देयर इज नो बैरियर बिटवीन हिम एंड देम.
क्योंकि उनके और बुद्ध के बीच क्या कह सकती है, ऐसा कोई विभाजन नहीं है, कोई दूरी नहीं है.
He knows that they're just the same as him.
वे जानते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे ये लोग हैं.
He feels at one with them.
वो उनके साथ पूर्णतः एक यानी सुसंवादित होते, एक रूप रहते हैं.
But he thinks to himself, how can I possibly persuade them?
लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे मैं इन लोगों को यह आग्रह करूँ या इन्हें समझाऊं कि ये जो मैं समझाऊं.
This is what the suttas tell us.
तो यह सूत्र हमें बताते.
It's especially in the Arya Paryasana Sutta, which is a very important sutta.
मुख्यतः जो Arya Paryasana Sutta है, जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है.
The Buddha never says, "I don't want to help people."
बुद्ध ने अभी ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं लोगों को मदद नहीं करना चाहता हूँ.
But he can't see how he can do it.
लेकिन वो देख नहीं पा रहे कि कैसे मैं यह करूं या कैसे मैं लोगों को यह समझाऊं.
Of course, the story then goes that Brahma Sahampati appeared to him.
तो आगे कहानी बढ़ती है और ऐसा हमें यानी पढ़ने को मिलता है कि ब्रह्म संपत्ति वहां आते हैं.
And well, you can make what you like of that. What does he represent?
अब आपको उसे जो समझना है उसे समझिए, किसका प्रतिनिधित्व वो कर रहा है.
If you're uncomfortable with it, you can say, well, it's something in his own mind, deep in his own mind.
अगर आप उस प्रतिमा के साथ आपको यानी तकलीफ होती है तो आप समझिए कि बुद्ध के मन के अंदर ही ऐसा विचार आया.
Or if you don't mind, you can say it's some big god.
या आप इस बात का अगर आपको बुरा नहीं लगता तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा कोई देव वहां आया.
Of course, always subordinate to the Buddha.
वो निश्चित ही बुद्ध से नीचे होते हैं.
But Brahma Sahampati then shows the Buddha that people are in different states of development. Do you remember?
तो ब्रह्म सहमपति वो बताते हैं कि लोग जो है वो विकास के अलग अलग स्तर पर है.
And that people are capable of growing.
लोग जो है वह विकास के लिए यानी उनका विकास हो सकता है, उनमें क्षमताएं है.
So it's as if that to the Buddha's mind there first comes the idea of the path.
तो बुद्ध के मन में सबसे पहले बात जो आती है वह है रास्ता यानी मार्ग.
To begin with, it's presented as if it's either you're enlightened or you're not enlightened.
तो अभी आप इसकी शुरुआत कर सकते हो कि पहले का जो भाग है उसमें दो बातें हैं, या तो आप संबोधि प्राप्त है या फिर आप संबोधि प्राप्त नहीं है.
But it's not like that.
लेकिन ऐसा नहीं है.
None of us are completely ignorant.
और हम में से सभी लोग पूर्ण अज्ञान में है ऐसा नहीं है.
We're at varying degrees of understanding.
हमारे समझ के अलग अलग स्तर पर हम सब लोग है.
And some are more capable than others of grasping what it is that the Buddha has seen.
तो कुछ लोग जो बुद्ध ने देखा उसको पकड़ने में काफी सक्षम है, उसे समझने की उनकी क्षमता है.
So in that story that we're to understand the Buddha's slow evolution of a path.
तो उस कहानी से हमें पता चलता है कि बुद्ध ने यानी बुद्ध के मार्ग की हल्की सी उत्क्रांति हो रही थी यानी पढ़ाने के मार्ग की.
You know, often when we talk about the enlightenment, it's as if it's one incident.
अक्सर हम ऐसा सोचते कि जो संबोधि प्राप्ति है या बुद्धत्व की प्राप्ति है वह एक घटना है.
And of course there is a key incident which is under the Bodhi tree.
निश्चित ही उन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी जो उस बोधि वृक्ष के तले घटी.
But actually what's happening is the Buddha's reflecting more and more deeply on his experience and refining it, broadening it, deepening it.
तो बुद्ध क्या कर रहे हैं, अपने अनुभव को अधिक वह गहरा कर रहे हैं, अधिक उसे विशाल कर रहे हैं और अधिक उसे सूक्ष्मता से उसे सोच रहे हैं.
So in this incident under the Ajapala Nigrodha, he realizes that it's possible to communicate.
तो उस अजपाल निग्रोध पेड़ के नीचे बुद्ध ने यह जाना कि यह मुमकिन है कि मैं लोगों को यह समझा पाऊं, संवादित कर पाऊं.
He never hesitates in a desire to teach.
पढ़ाने की जो इच्छा है उसको कभी भी बुद्ध ने नकारा नहीं.
He never says he doesn't want to do it.
बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं इसे करना नहीं चाहता हूं.
It's as if he's just can't see how to.
केवल वो देख नहीं पा रहे कि कैसे इसे वे करें.
Until it becomes clear to him there is a way.
जब तक उन्हें अपने आप स्पष्ट नहीं होता कि वहां मार्ग क्या है.
So I've gone into all of this just to make it quite clear that the Buddha's enlightenment under the Bodhi tree always implied an openness to help others.
तो मैं यह काफी बार कह चुका हूं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बुद्ध की बोधि वृक्ष के तले संबोधि प्राप्ति की घटना है वह हमेशा ही इस बात का द्योतक है कि वो औरों के प्रति खुली है.
So that desire to help others is of the essence of his enlightenment.
तो औरों को मदद करना यह बुद्ध के बुद्धत्व का सार है.
It's not a sort of sentimental feeling.
और यह कोई भावनिक भाग नहीं है.
He can just see people are suffering and they don't need to.
वो स्पष्ट रूप से उसे देख पाते हैं कि लोग दुख में हैं, पीड़ित हैं और उन्होंने उस पीड़ा में रहने की आवश्यकता नहीं है.
Because we don't really understand this life, we don't really understand ourselves, we just cause ourselves and each other a lot of suffering.
तो हम इसे समझ नहीं पाते और इस ना समझ के कारण हम अपने आप के लिए औरों के साथ जब हमारा संपर्क आता है हम पीड़ाएं या दुख निर्माण करते हैं.
And of course the Buddha wants to stop that.
और बुद्ध उसे रोकना चाहते हैं.
He wants to help people to get out of it.
बुद्ध उनसे उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं.
So we're going to try to develop that state of mind.
तो उस प्रकार की जो मनस्थिति है, उस मनस्थिति को उसका विकास करने की हम कोशिश करेंगे.
We're trying to develop the compassionate side of the Buddha's enlightenment.
बुद्ध के संबोधि का जो करुणा का आयाम है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे.
Of course, just as we're not completely without wisdom, we're not completely without compassion.
जैसे कि मैंने कहा कि हम पूरी तरह प्रज्ञा रहित या करुणा रहित नहीं है.
But we're going to try to deepen and extend that.
और लेकिन हम उसे अधिक गहरा करना चाहते हैं और उसे अधिक फैलाना या विकसित करना चाहते हैं.
And we're going to use a method of doing so that comes down to us through a long Buddhist tradition.
और हम उस पद्धति का इस्तेमाल या अभ्यास करने वाले जो सीधी बौद्ध परंपराओं में जाती है.
We're going to engage with what is known as mind training.
हम उस बात के साथ व्यस्त होने जा रहे जिसे कहते हैं मन का प्रशिक्षण.
Mind training here being specifically bodhicitta training.
और यहाँ मन का प्रशिक्षण का अर्थ यह है कि बोधि चित्त का प्रशिक्षण.
Deliberately trying to cultivate the state of mind that the Buddha had under the Bodhi tree.
उस प्रकार के मन की वृद्धि करना या विकास करना जैसा मन उस बोधि वृक्ष के नीचे था.
Of course, we're doing part of that through doing the six element practice.
उसका एक भाग हम वैसे भी कर रहे हैं जो छह धातुओं की हम साधना करते हैं उसके द्वारा.
Yes, when we're doing the six element practice, we are approaching the bodhicitta.
तो जब हम छह धातुओं की साधना करते हैं तो हम बोधि चित्त के ओर अपना रुख करते हैं.
When we get to the sixth stage and we give up to any extent the idea of consciousness as mine, well, there's bodhicitta.
जब हम प्रगति करते हैं या जो क्या कह सकते कि उस छह धातुओं की श्रृंखला में जब हम विज्ञान में आते हैं तो we give up.
Any idea of consciousness as mine.
तो ऐसा विज्ञान की कोई कल्पना कि वो जो मेरी है, जब हम उस स्व को छोड़ देते हैं तो वहाँ बोधिचित्त होता है.
But we're approaching it from the angle of wisdom.
लेकिन उस चरण में हम प्रज्ञा के दृष्टिकोण से विज्ञान को देखते हैं.
In the practice we're going to do in a little while, we're approaching it from the aspect of compassion.
लेकिन जो साधना या जो अभ्यास हम अभी करेंगे उसे हम करुणा के आयाम से देखेंगे.
And the two really work together.
और वो दोनों बातें जो है वह इकट्ठा काम करती है.
That's why we did the six element practice this morning. We're going to do the bodhicitta practice this afternoon.
तो इसलिए हमने बोधिचित्त का अभ्यास सुबह किया और इस दोपहर को हम बोधिचित्त का अभ्यास करेंगे.
We're going to deliberately develop that side of the Buddha's mind.
तो बुद्ध का करुणा का जो आयाम है उस आयाम को हम अभ्यास करेंगे या साधना करेंगे.
Just as this morning we were developing the wisdom side.
जैसे कि आज की सुबह हमने प्रज्ञा के आयाम का विकास किया.
We were developing this morning the side of the Buddha's mind that sees through all illusions.
तो उस मन को हमने देखा जो इन सभी संभ्रम या जो मिथ्या है उसको भेद कर बुद्ध देखते हैं.
And this afternoon we're going to be exploring that aspect of the Buddha's mind that reaches out to others to help them to become free.
लेकिन आज के यानी दोपहर में हम उस आयाम को देखेंगे जहां बुद्ध उस मन को विकसित कर रहे हैं जहां लोगों को वो दुखों से मुक्त करना चाहते हैं.
And to begin with we need to develop very strongly the same state of mind that I believe the Buddha had under the Ajapala tree.
मैं ऐसा कहूंगा कि हमको बिल्कुल वैसा ही मन तैयार करना है जो बुद्ध ने अजपाल वृक्ष के तले किया था.
This strong sense of identity with all beings.
सभी चीजों के साथ हम अपनी पहचान बनाने की प्रबल प्रवृत्ति हम में है.
This strong recognition that they're actually just like us.
ऐसा जानना कि अन्य लोग जो है वो बिल्कुल मेरे जैसे है.
They want happiness just like us.
उनको भी सुख चाहिए जैसा मुझे चाहिए.
They want to avoid pain just like us.
जैसी मुझे पीड़ा नहीं चाहिए वैसे ही उन्हें पीड़ा नहीं चाहिए.
And yet they're trapped by their ignorance in the prison of karma.
लेकिन अपने अज्ञान के कारण वो अपने कर्मों के यानी क्या है तुरुंग में वो कैद है.
Because of our ignorance, we act unskillfully.
क्योंकि हमारे अज्ञान के कारण हम अकुशलता से पेश आते हैं या अकुशल कर्म करते हैं.
Because we act unskillfully, we get suffering.
और चूंकि हम अकुशलता से काम करते हमें दुख होता है.
Because we don't understand, we're trapped.
चूंकि हम समझ नहीं पाते हम फंसे हुए या ट्रैप है.
So we try to develop as strong a sense of this as possible.
तो जितना प्रबल हो सके यह मनोवस्था हम निर्माण करने की कोशिश करते हैं.
Everybody, all this sound, all this noise, all this chaos, people seeking happiness.
तो ये सब जो शोर शराबा या ये सब जो इर्द गिर्द आप देख रहे हो लोग उसके कारण ही खुश होंगे ऐसा वो समझते हैं.
Even the worst things that people do, they're in the pursuit of happiness.
सबसे बुरी बात भी वो क्यों ना करे उन्हें ऐसे लगता है कि ऐसा करके मुझे सुख मिलेगा.
Even the wars, even the atrocities, even the oppression is caused in order to bring happiness.
तो जो उत्पीड़न है या जो हिंसा है या युद्ध जो होते हैं उनको ऐसे लगता है इससे मुझे सुख मिलेगा.
So actually everybody is just like us.
वैसे देखा जाए तो हमारे जैसे ही अन्य लोग हैं.
And we can feel a very strong sympathy for them on that basis.
और उस बुनियाद पर हम यह जान सकते हैं कि उनको गहरी सहानुभूति की आवश्यकता है.
Even if we can develop this strongly enough, we can see that even our enemies, even those who are trying to harm us, are simply trying to be happy.
तो हम यह देखते हैं अगर हम अधिक प्रबल करुणावान होते हैं तो हमारे दुश्मन भी जो कर रहे हैं वो सुख पाने के लिए कर रहे हैं.
This is the mood we try to cultivate at the beginning of this practice.
तो यही जो मूड है मानसिकता है हम वृद्धिंगत करने की कोशिश करते हैं इस साधना के पूर्व पात्री में.
We try to reach the same state of mind that the Buddha seems to have had, at least under the Ajapala tree, perhaps all the time he was at Bodh Gaya.
तो यही इस प्रकार का जो मूड है या जो मनोवस्था है हम लाने की कोशिश करते हैं जो बुद्ध की अजपाल वृक्ष के तले थी. शायद सभी वृक्षों के नीचे बुद्ध की यही भावनाएं होगी.
Throughout the suttas, the Buddha shows very strong awareness of the tragedy of people's lives.
तो बुद्ध काफी प्रबलता से यह भाव दिखाते हैं कि लोगों की त्रासदिया उनकी ट्रेजेडी जिसे कहते हैं वो क्या है.
He sees it absolutely plainly.
वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसे देख पाते हैं.
In this practice, as it's handed down to us, the words are: people seek happiness, cause themselves pain. What a pity!
तो उसमें ऐसा एक विधान आता है कि लोग जो सुख के चाह में हैं, अपने आप को बार बार दुख के खाई में डाल रहे हैं. What a pity का मतलब क्या दयनीयता है क्या दयनीयता है.
It's not really strong enough, is it? It's much more than a pity, it's a tragedy.
तो यह दयनीयता से भी भयंकर है यह उनकी त्रासदी है यानी घटना है.
Okay. So we try to feel that as strongly as we can.
तो जितना प्रबल हो सके हमने उसे महसूस करना चाहिए.
What we usually do, of course, we shut down, we don't notice it because we can't do anything about it.
तो अक्सर हम उसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम उस संभावना को रोक नहीं सकते.
Because we're too busy seeking our own happiness in the wrong way.
क्योंकि हम अपने ही सुख के पीछे पड़े हुए गलत तरीके से.
But we try to open ourselves to the tragic situation of humanity.
लेकिन हम अपने आप को खुला कर सकते हैं जो इस मानवता का दुख या त्रासदी है उसके प्रति.
Not just humanity, all living things.
केवल मानवों के लिए नहीं तो सभी जो सजीव है उनके लिए.
And we recognize that, well, we'd really like to help them.
और हम इस बात को पहचानते हैं कि हम उनको मदद करना चाहते हैं.
Wouldn't it be so good if we could at least lead some people out of that suffering?
यह कितनी अच्छी बात होगी कुछ लोगों को हम उस दुख से बाहर निकाल पाते हैं.
I think it's quite a common feeling, and maybe it's especially here in India. You just feel so impotent,
impotent,
impotent, without power.
अक्सर भारत में हम अपने आप को क्या है बलहीन महसूस करते हैं.
I know it's very common, for instance, when you read about all these atrocities.
अक्सर जब यह जो यानी जाति मूलक हिंसाएं होती है तब आपको ऐसे लगता है कि मैं क्या कर सकता यानी बल नहीं है मेरे पास.
Many of my Indian friends talk to me of this feeling of overwhelming impotence when they read again and again and again of the things that happen in the name of caste.
तो अपने आप को यह यानी मददहीन या बलहीन महसूस करते हैं जब वो ऐसी जाति मूलक हिंसाओं को देखते.
Wouldn't it be so good if we could do something to help people to stop that behavior?
यह कितनी अच्छी बात होगी कि कुछ लोगों को ऐसा बर्ताव हिंसा का बर्ताव करने से हम रोक पाए.
And actually it's not just that that is going on. There's tragedies everywhere.
और वही बात हो रही है, ऐसा नहीं है, हर जगह इस प्रकार की त्रासदिया ट्रेजेडीज हो रही है.
You read the newspaper, you see what's happening in Syria, Somalia, so many places where people live in hell.
अब आप अखबार पढ़िए, सीरिया, सोमालिया, इन जगहों पे जो भी हो रहा है वो नरक जैसी अवस्थाएं है.
But you feel, what can I do?
लेकिन हमें ऐसे लगता है मैं क्या कर सकता
हूँ. You know, I've got no ability to help.
मेरे पास कोई बल नहीं है उन्हें मदद करने का.
And there's terrible feeling sometimes lack of power, of even depression can come upon you.
और बहुत बार ऐसे हमें लगता है कि मेरे पास कोई बल नहीं है, हम यानी निराश होते हैं, डिप्रेस हमें लगता है.
So you just pull the shutters down, you don't look.
तो हम क्या करते हैं, हमारा जो दरवाजा है बंद कर सकते बंद कर देते, पर्दा गिरा देते, हम देखना नहीं चाहते.
Just get on with your own life.
ऐसे लगता है चलो मैं अपने जीवन के साथ कुछ करूं.
But in this practice you open up.
लेकिन इस अभ्यास में हम अपने आप को खुला करते हैं, खोलते हैं.
And you realize that you can't do anything directly.
और हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि कोई भी बात हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते.
Or you can only do a little bit.
या बहुत थोड़ा सा ही कुछ हम कुछ कर सकते हैं.
What you have to do is to lead people to real understanding, real wisdom.
क्या हम कर सकते हैं लोगों को सच्चे प्रज्ञा की ओर हम ले जा सकते हैं.
How can you lead people to wisdom unless you've got some wisdom?
अब आप कैसे लोगों को प्रज्ञा तक पहुंचाओगे जब आपके ही पास प्रज्ञा नहीं है.
So you make a strong vow to go for refuge to the three jewels, as it were, on behalf of all beings.
तो हम लोगों को त्रिरत्नों के पास ले जाते
on behalf of on the half of all beings.
Half of
all on beings. Behalf of.
कम से कम आधे लोगों को हम उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं.
You say, well, I will gain enlightenment so that I can help everybody.
तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं संबोधि की प्राप्ति करूंगा ताकि मैं और लोगों को मदद कर सकूं.
I will gain enlightenment so that I can help others to gain enlightenment.
मैं संबोधि की प्राप्ति इसलिए करूंगा ताकि मैं और लोगों को संबोधि प्राप्ति के लिए मदद करूंगा.
That doesn't mean you're thinking, oh well, I'll get enlightenment and then I'll worry about them.
इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैं संबोधि की प्राप्ति करूं और फिर बाद में मैं और लोगों की चिंता करूं.
You try to go for refuge to the three jewels, bringing everybody with you.
तो आप त्रिरत्नों को शरण जाते हैं और लोगों को अपने साथ लेकर.
This is the strong determination you make at this point in the practice.
तो यह एक यानी क्या कह सकते कि प्रबल कटिबद्धता हम करते इस साधना में.
And really, this is the spirit of our order, essentially.
और सार रूप से देखा जाए तो यही चेतना हमारे संघ की है.
This is the meaning of our order.
यही संघ का अर्थ है.
Going for refuge to the three jewels together for the benefit of all.
त्रिरत्न को शरण जाना सामूहिक रूप से सबके कल्याण के लिए.
So you develop as powerful a sense of going for refuge for the benefit of all as you can.
तो यह प्रबल भाव हम निर्माण करते हैं औरों के कल्याण का इकट्ठा आकर.
And that sort of generates some spiritual energy within you.
और यह आप में कुछ यानी धार्मिक जो बल है वह धार्मिक बल आपको देता है.
And when you've got some of that sort of fire going in your heart, you begin to use it.
तो इस प्रकार की जब ज्वाला आपके हृदय में भड़कती है तो फिर आप और लोगों तक पहुंचते हो.
And you imagine all beings all around you.
और फिर आप कल्पना करते हो कि आपके इर्द गिर्द सभी सजीव है.
Actually, they are all around you. You don't have to imagine it.
आपको उनकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपके इर्द गिर्द है.
You can hear them all around. You can even see them in the room.
वह आपके इर्द गिर्द है, यहाँ इस कक्ष में भी आपके इर्द गिर्द सजीव है.
All beings surround us.
हमेशा ही हम सजीवों से घिरे हुए हैं.
And you realize that within them there is an accumulation of ignorance and evil karma, evil vipaka,
तो
bad karma, vipaka.
तब आप देखते हो कि उनके बीच जो है वह जो बुरे कर्म है उनका संग्रह और उनके जो बुरे विपाक है उसका संग्रह है.
And you see that within them is like a dark smoke.
और उनमें आप उसे देखते हो कि मान लो वहाँ कोई यानी काला धुआं जैसा वो है.
Very thick, very black, very unpleasant.
वो यानी सुखद नहीं है, काफी काला है.
And so you see inside yourself some of the intensity of your own going for refuge.
और आप अपने भीतर देखते हो कि त्रियत्न को शरण गमन जाने की प्रबलता.
And you imagine that is like a brilliant blazing light.
और उस प्रबलता को या उस वो जो कड़ी चाह है उस चाह को आप एक क्या कह सकते हैं तेजस्वी प्रकाश जैसे आप देखते हो.
एंड यू ब्रीथ दैट लाइट आउट.
और वो जो प्रकाश है वो तेज है उसको आप बाहर डालते हो.
ऑल योर ओन वर्च्यूज, ऑल योर ओन मेरिट, ऑल योर ओन डेडिकेशन यू शेयर विद अदर्स.
तो आपके जो सभी जो पुण्य कर्म है या जो भी आपके गुण है वो और लोगों के साथ आप बांटना चाहते हो.
With your breath it goes out into the bodies of all beings.
तो आपके आपकी जब बाहर सांस जाती है उस सांस के द्वारा वह तेज अन्य सजीवों तक पहुंचता है.
And as it fills their bodies it begins to drive out the dark smoke.
और वो जो काला धुआं है वह काला धुआं उसे नष्ट करता है या बाहर फेंकता है.
The dark smoke of their suffering, of their evil.
और उनका जो यारे पीड़ा है उनमें जो जो क्या कह सकते हैं नकारात्मक जो बातें हैं उनका वह धुआं है.
एंड यू ब्रीथ दैट इन
दैट ब्लैक स्मोक यू ब्रीथ इन.
यस.
तो वो जो काला जो धुआं है उस काले धुआं को आप अपने सांस के साथ अंदर लेते हो.
ही हैड टू चेक यू रियली डू ब्रीथ इट इन.
तो मैं फिर से यानी चेक कर रहा हूँ कि वाकई में वो काला धुआं आप अपने अंदर लेते हो.
यू डोंट शट इट ऑफ.
आप उसे बंद नहीं करते.
यू ब्रीथ इट इन.
आप उसे सांस के साथ अंदर लेते हो.
इट मीट्स द इंटेंसिटी ऑफ योर ओन गोइंग फॉर रेफ्यूज.
तो आपकी जो प्रबल जो इच्छा है जो चाह है शरण गमन करने की उस शरण गमन की चाह से वो काला धुआं मिलता है.
एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रिलियंट लाइट.
और वो काला धुआं जो तेजो जो, जो प्रकाश कुंज कह सकते हैं या जो तेज है उस तेज में वो परिवर्तित होता है.
यू ब्रीथ इट आउट.
और वो जो तेज है वो आप सांस के साथ बाहर फेंकते हो.
सो यू ब्रीथ आउट द प्योर व्हाइट लाइट.
तो जो शुद्ध शुभ्र प्रकाश है उसे आप बाहर उत्सर्जित करते हो सांस के द्वारा.
एंड यू ब्रीथ इन द ब्लैक स्मोक ऑफ देयर सफरिंग एंड ईविल.
और उनका जो दुख का जो काला धुआं है उसे आप सांस के साथ अंदर लेते हो.
ऑल द टाइम यू आर गोइंग फॉर रेफ्यूज टू द थ्री ज्वेल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल.
हमेशा ही आप त्रिरत्नों को शरण जाते हो औरों के कल्याण के लिए.
इफ यू स्टॉप डूइंग दैट देन द ब्लैक स्मोक विल ओवरवेलम यू.
अगर आपने उसे रोक दिया तो वो जो काला धुआं है उसका जो प्रमाण है वो बढ़ जाएगा.
एंड देयर वोंट बी एनी व्हाइट लाइट टू ब्रीथ आउट.
तो फिर जो शुभ्र प्रकाश है वह उत्सर्जित करने के लिए बाहर फेंकने के लिए आपके पास वो प्रकाश ही नहीं होगा.
योर स्मॉल स्टोर ऑफ मेरिट विल सून बी एग्जॉस्टेड.
तो यानी क्या कह सकते हैं छोटे मोटे भी जो पुण्य कर्म होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे विलीन हो जाएंगे.
सो यू आर ब्रीथिंग आउट द प्योर व्हाइट लाइट ब्रीथिंग इन द ब्लैक स्मोक.
तो यह जो शुभ्र तेजस्वी तेजोमय जो प्रकाश है उसे आप सांस के द्वारा उत्सर्जित करते हो और जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो जो काला जो सारा धुआं है वो आप अंदर लेते हो.
ऑल द टाइम सेइंग एंड फीलिंग विद ऑल बीइंग्स आई गो फॉर रेफ्यूज टू द थ्री ज्वेल्स.
तो यही निश्चय लेके कि सभी सजीवों के लिए मैं त्रिरत्नों को शरण गमन करता हूं.
And gradually you find that all the black smoke is being transformed.
और धीरे धीरे आप देखते हो कि वो पूरा जो काला जो धुआं है वह काला धुआं परिवर्तित होता है.
It is just pure white light radiating out to pure beings.
तो केवल शुभ्र प्रकाश ही बाहर उत्सर्जित होता है शुद्ध सजीवों के लिए.
And at that point, in a way, the practice has achieved its first objectives.
तो उस बिंदु पर अपने साधना का पहला चरण यानी हासिल हुआ होता है.
And we began to experience something of the state of mind of the Buddha down there at the temple.
तो उस प्रकार का कुछ अंश बुद्ध के मन का हम अनुभव कर सकते हैं जो बुद्ध ने वहां बोधि वृक्ष के तले उन्होंने जो अनुभव किया.
You've experienced something of the bodhicitta.
बोधिचित्त का ऐसा जो अनुभव है हम ले सकते हैं.
And if we can practice this every day, it will have a very big effect on our attitude to the world.
और अगर इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं तो दुनिया का जो नजरिया है उस नजरिए के ऊपर इसका कुछ प्रभाव हो सकता है.
This breathing out and breathing in is a way of approaching the mind of the Buddha.
तो यह जो सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना है यह बुद्ध के reaching them
approaching of yeah, getting mind. Some feeling for yeah.
तो बुद्ध के मन के लिए कुछ भाव हम अपने मन में ऐसा निर्माण कर सकते हैं.
So it's a very powerful practice.
यह काफी प्रबल साधना है.
It's got a very very long tradition.
इसका काफी यानी लंबी इसकी परंपरा है.
It's mainly been kept alive in Tibet.
यह जो साधना है अभी भी जीवित रही या है तिबेट में.
But it definitely came from India.
लेकिन निश्चित ही यह साधना भारत से आई है.
In fact, one of the great figures in the development of this approach to practice began here.
तो इसकी जो शुरुआत हुई इस साधना की पीछे अगर हम परंपराओं में जाते हैं तो यही स्थल है जहां इसकी शुरुआत हुई.
The great Acharya Atisha was here when he gained the inspiration to take up these bodhicitta practices.
जो महान आचार्य अतीश है वो यहाँ पे थे और उन्होंने इस साधना को यही आकर उस प्रेरणा से विकसित किया.
And he spent many, many years studying and practicing according to these traditions.
और काफी सालों तक इन परंपराओं के द्वारा उन्होंने इसका अभ्यास किया.
So it's very appropriate that we're doing it here.
तो यह काफी यानी क्या कह सकते हैं कि सही है हम इसे यहाँ करेंगे.
So we're going to do this practice in quarter of an hour or so.
तो 15 मिनट के बाद हम यह अभ्यास करेंगे.
And I hope that you'll at least begin to get some feeling for what's happening.
और जो कुछ भी हो रहा है इसके करने के बाद हमें शायद वो भाव आएगा.
Don't worry if it doesn't come very quickly.
अगर वो भाव नहीं आता वैसी फीलिंग नहीं आती तो उसकी चिंता मत कीजिए.
May take you a little while to get used to the mechanics of it.
तो उसका जो यह क्या यंत्रणा जो है उसके साथ यानी एक रूप होने के लिए कुछ समय लगेगा.
But we'll be doing it every day for 6 days, so you'll definitely get some experience of it.
तो 6 दिन तक हमें इसे करेंगे तो निश्चित ही इसका कुछ अनुभव हमें आ सकता है.
And we try to bear in mind that through this practice we're getting slowly a bit closer to the Buddha's mind.
और हम यह जान सकते हैं कि इस ध्यान साधना से हम धीरे धीरे बुद्ध के मन के करीब हम जा रहे हैं.
This will be our basic practice from this point of view.
तो इस दृष्टिकोण से यह हमारा एक बुनियादी अभ्यास या साधना होगी.
But I'll introduce you to some more aspects of this kind of a practice.
और ऐसे कई अन्य आयामों का आपके साथ में परिचय करवाऊंगा इस साधना का.
Apart from meditation, there are ways in which we can develop the attitude that the Buddha had in everyday experience.
ध्यान के अलावा भी दैनंदिन जो बुद्ध के अनुभव थे और पद्धतियां कैसे हम उनको हृदयंगत करें कैसे हम उनको विकसित करें.
And if we can really develop those, well, we'll be more and more bodhisattvas ourselves.
और अधिक से अधिक अगर हम उन्हें विकसित करते हैं तो हम स्वयं बोधिसत्व के जैसे बन सकते हैं.
And that will give us the strength to continue the work that Baba Saheb began here in India.
और यह हमें वह बल प्रदान करेगा जो काम बाबा साहब करना चाहते थे.
Nobody but a bodhisattva can really do this work.
Nobody
but a bodhisattva.
कोई नहीं, लेकिन केवल बोधिसत्व ही ऐसे काम को कर सकता है.
Ordinary social work is not enough.
जो सामान्य सामाजिक कार्य है वह पर्याप्त नहीं है.
Something more is required.
उससे अधिक कुछ चाहिए.
Something transcendent.
कोई तो भी जो परिवर्तित ऐसी बात है उसकी आवश्यकता है.
If we're to continue the great Dhamma revolution that Baba Sahib began 60 years ago, we need that sort of strength.
अगर 60 साल पहले जो धम्म क्रांति बुद्ध बाबा साहब ने शुरुआत की है, अगर उसे जीवित रखना है तो इस प्रकार का कोई परिवर्तित ऊर्जा हमें चाहिए.
We need something of the bodhisattva spirit.
बोधिसत्व की चेतना का यानी भाव हमें चाहिए.
We need bodhicitta.
हमें बोधिचित्त की आवश्यकता है.
And that's that bodhicitta that at its highest level is the mind of the Buddha.
और बोधिचित्त का सर्वोच्च जो बिंदु है, उच्चांक है, वह बुद्ध का मन है.
So we'll just have a break for 15 minutes and then come back and we'll do the bodhicitta practice.
तो हम यहाँ आएंगे 15 मिनट के बाद और फिर हम इस साधना को हम करेंगे.